अच्छा, पेम्फिगस वल्गैरिस इन प्रेगनेंसी में हमसे ये पूछा जा सकता है कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसको पेम्फिगस वल्गैरिस हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ऑलरेडी है, तो उसमें क्या रिस्क हो सकते हैं? तो हमने इसको इस तरह से करना है कि इसमें जो है ना हमारे पास डिफरेंट आउटकम्स आ सकते हैं। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकते हैं, ट्रांजिएंट जो है वो ब्लिस्टरिंग और इरोजन हमें बेबी के अंदर नज़र आ सकते हैं, लेकिन वो ट्रांजिएंट होते हैं जब तक कि वो मैटरनल एंटीबॉडीज सर्कुलेशन से क्लियर नहीं हो जाते। उसके अलावा जो डिज़ीज़ है वो एग्रीवेट हो सकती है, एक्सेसबेट हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि क्योंकि थर्ड ट्रेमेस्टर तक जो सीरम कॉर्टिसोल लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ हुआ होता है, इम्यूनो सप्रेशन होती है, तो इस वजह से डिजीज़ बेहतर भी हो सकती है, लेकिन परप्यूरम में और आफ्टर द डिलीवरी जाके दोबारा से वो एक्सेसबेट हो जाती है डिज़ीज़। और उसके अलावा जो है वो अगर बहुत ज़्यादा इरोजन्स है वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर, तो उसमें हमें सी सेक्शन भी करना पड़ सकता है। पेरीनेटल मॉर्टेलिटी इज़ अप टू 12% विद द एक्टिव डिजीज़। अगर उसमें प्लेसेंटल डिसफंक्शन या इनसफिशेंसी हो गई है तो उसमें पेरीनेटल मॉर्टेलिटी कैन रीच अप टू 12%। तो इसमें ये हमने करना होता है कि जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास वो हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, टॉपिकल एंड सिस्टमिक। उसके अलावा सेकेंड लाइन जो ड्रग्स हैं उसमें एज़ाथियोप्रीन और प्लाज्माफेरेसिस आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन। बाकी के जो ड्रग्स हैं जो हम एडजुवेंट थेरेपी में देते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी में। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड को हमने 10 to 15 mg पर केजी पर डोज पर डे से ज़्यादा नहीं देना। अगर हमें इससे ज़्यादा हाई डोज देना पड़े तो इसमें जो है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, तो उस वजह से फीटल ग्रोथ मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होगा। एज़ाथियोप्रिन को भी जो है ना कंसिडर किया जाता है टू बी द सेफेस्ट एडजुवेंट थेरेपी टू बी गिवन इन प्रेगनेंसी। थर्ड लाइन में फिर हम प्लाज्माफेरेसिस और आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन कंसिडर कर सकते हैं।